पिछले रविवारों में ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो 8 मंत्र हैं उनको समझ रहे थे, हर शब्द का अर्थ और ओवरऑल मंत्र का भाव। तो अभी तक हमने 6 मंत्र कर चुके हैं, विश्वानि देव से लेकर के प्रजापते न त्वदे तक। जो अंतिम दो, जो लास्ट दो है, सानो बंधुर जनिता और अग्ने नय सुपथा, आज उसकी चर्चा करेंगे। तो पहले मंत्र देखते हैं। सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामा निवेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त। ये मंत्र यजुर्वेद के 32वें अध्याय के 10वां मंत्र है। पहले इसके जो शब्द अर्थ देख लेते हैं, ऑर्डर में वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। स नह, नह मतलब हमारे बंधु, वो जो परमात्मा, नह हमारा बंधु है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, जनिता पैदा करने वाला है, प्रोक्रिएटर है, और सविधाता वो सस्टेन करने वाला, धारण करने वाला, केयरटेकर करने वाला है। विश्वा धामानी भुवनानी वेद, वेद का अर्थ जानना, वो जानता है, वो परमात्मा जानता है क्या, विश्व समस्त, एवरी। धाम, धाम का अर्थ नाम भी है, नेम, और लोकेलिटीज, जिस जगह पर हम रहते हैं या जो हमारा नाम है, वो सब वो जानता है। और भुवनानी, जो कुछ भी पैदा हो रहा होता है, वह पैदा हुआ है भुवन, ये सारा संसार, उसको भी वो जानता है। वो परमात्मा यत्र, जिसमें देवाः अमृतमानशाना, जब मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, जब मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, तब वो आत्माएं, जो दिव्य आत्माएं हैं, वो अमरत्व को, इमोर्टैलिटी को एंजॉय कर रहे होते हैं। कहां? तृतीय धामन अध्ययरयंत, उस तीसरे स्टेज ऑफ लाइफ में, वो तीसरे लेयर में वो एंजॉय कर रहे होते हैं। तो पहले स नो बंधुर जनिता, जरा एक मिनट में जरा पानी पूजा। वो परमात्मा हमारा बंधु भी है, पिता भी है, माता भी है। इसी तरह ऋग्वेद में, वेदों में और एक मंत्र आता है, त्वमिहिना पिता वसो तम माता शतक्रतो, तुम ही मां हो, तुम ही पिता हो, जिसका आगे जाकर किसी विद्वान ने एक सुंदर श्लोक लिखा, जिसको आप पढ़ते हैं, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तुम ही मां हो, तुम ही पिता हो, तुम ही रिलेटिव हो, तुम ही फ्रेंड हो, तुम ही सब कुछ हो, क्योंकि तुम्हारे बिना हमारा अस्तित्व नहीं है ना। तो हमारे माँ बाप हमें पैदा जरूर किया, पर हमारे माँ बाप सोच समझ के हमें पैदा नहीं किया, वो चाहकर हमें पैदा नहीं किया है, वो सिर्फ मीडियम है, वो सिर्फ साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, जिनके द्वारा हम इस धरती में आए। अगर वो अपनी मर्जी से हमें पैदा करते या हमारे मर्जी से हमारे संतान पैदा होते, तो हर व्यक्ति फिर कुछ दूसरे तरह के संतान सोचता। इसका मतलब है कि हम तो सिर्फ मीडिया है, परमात्मा के द्वारा जो सिस्टम बनाया गया है, वो सिस्टम के द्वारा बच्चा पैदा होते हैं, हम उसमें सिर्फ माध्यम है, इंस्ट्रूमेंट है। वो तो सबका पिता है, वही माता भी वही। तो पिता कहने में प्रॉब्लम होगा कि भाई वो क्या पुल्लिंग है, पुरुष है? नहीं। माता कहने पर प्रॉब्लम में वो क्या स्त्रीलिंग है? नहीं। इसीलिए हम इंसान कहते हैं तुम ही माता हो, हमारे शास्त्र कहते हैं माता भी तू ही है, पिता भी तू है, क्योंकि तुम ही सारा अरेंजमेंट करते हो, तुम ही व्यवस्था करते हो। हम जो यहां पैदा हुए हैं वो पैदा तुमने निश्चित किया है, मुझे कौन सा जन्म मिलेगा, किस तरह का शरीर मिलेगा, किस तरह के माँ बाप मिलेंगे, कितने साल का मेरा एज होगा, वो तुम डिसाइड करते हो। तुम हमारे लिए माँ बाप प्रोवाइड करते हो, तुम हमारे लिए फैमिली प्रोवाइड करते हो, इसलिए तुम ही जनिता हो, जनक हो, पैदा करने वाले हो, और तुम ही हमारा बंधु हो। हमारे जो मनुष्य बंधु हैं या पशु पक्षी जिनको भी हम अपना रिलेटिव या दोस्त बनाते हैं, रिलेटिव तो मजबूरन बनते हैं, हम चाहे ना चाहे वो हमारे रिलेटिव है। मैं जिस खानदान में पैदा हुआ, जिस फैमिली में पैदा हुआ, तो वो माँ बाप के अलावा चाचा चाची मौसा मौसी रिश्तेदार सब बाय डिफॉल्ट हमें मिलते हैं, हमारी उनमें इच्छा हो ना हो वो हमें मिलते हैं। और मनुष्यों में जहां हम अपनी फ्रेंडशिप करते हैं, बंधुत्व या मित्रता करते हैं, तो वहां हमारी सोच के हिसाब से हम बनाते हैं, कहीं रंग जाते हैं, कहीं राइट जाते हैं, कहां सही जाते हैं, कहीं गलत जाते हैं। तुम नित्य बंधु हो, सबका परमानेंट सबके साथ रहने वाला हो। तुम ऐसा है कि बंधु शब्द बंधन, बंधु शब्द बना बंधन से, जो बांधता है, वो दोस्त हो रिलेटिव हो जो बांधता है। तुम एक ऐसा हो 24 घंटे मेरे से बंधे हुए हो, मैं चाहूं तुम्हें हटा नहीं सकता, तुम चाहो मुझे हटा नहीं सकते हो, तुम मेरे जर्रे जर्रे में हो, मेरे अंदर अंतर्यामी रूप में हो, मुझे गाइड करते रहते हो मेरे दोस्त की तरह। ये गलत है ये सही है वो अलग बात है कि मैं नहीं सुनता हूं, हम सब ज्यादातर समय नहीं सुनते। महर्षि दयानंद कहते हैं तुम्हारे जब भी तुम कोई अच्छा काम करते हो, तुम्हारे अंदर से ये जो अच्छा फीलिंग होती है, गुड फीलिंग होता है, सुकून फीलिंग होता है, वो परमात्मा की दी गई प्रेरणा है। जब भी गलत काम करते हो, गलत काम करने की सोचते हो, अंदर से बैड फीलिंग, गलत समझ, एक तरह की बुरा फीलिंग आता है, बुरा सेंस आता है, अच्छा नहीं फील होता है, हेवी हेवी सा फील होता है। कहते हैं वो परमात्मा के द्वारा दिया गया प्रेरणा है, तुम ही मेरे अंदर मेरे दिल में मेरे दिमाग में बैठ करके प्रेरणा करते हो, ये सही है गलत है। पर हम ठहरे मनुष्य, हम एक्सटर्नल जो जो इंपल्शन है जिसके द्वारा हम बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, वो रूप हो, सुंदरता हो, रस खाने का स्वाद हो, कोई अच्छा सुनने का हो, इंद्रियां हमें खींच लेते हैं, और हमारे लालच गुस्सा इल्यूजन इग्नोरेंस ये सब हेल्प करते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर से जो परमात्मा की द्वारा दी गई प्रेरणा, जो सिक्स सेंस या कॉमन सेंस या अच्छा बुरा फील होता है जब हम बुरा अच्छा काम करते हैं, उसको हम दबा देते हैं, सप्रेश कर देते हैं, फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे दुनिया में चलते हैं। पर वो परमात्मा हमेशा तुम्हारे अंदर सबसे सच्चा मित्र की तरह तुम्हें गाइड करता रहता है। अथर्ववेद में बड़ा खूबसूरत मंत्र आता है, मंत्र कहता है, उसका भाव है कि तुम पब्लिक में जो कुछ कोई काम करते हो या छुपा के करते हो, अंधेरे में करते हो, दरवाजा बंद करके करते हो, दोनों काना फुसी करके, कान फुसफुस करके, विस्परिंग करके बात करते हो, तुम्हें लगता है कोई तुम्हें देख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, जान नहीं रहा है, हो सकता है कोई मनुष्य देख नहीं रहा हो, जान रहा हो, पर वो जो वरुण वो सब जगह कवर किया हुआ फैला हुआ परमात्मा, वो तीसरा हमेशा तुम दोनों के फुसफुसाहट के बीच में होता है, तुम्हारे अकेले किए हुए अच्छा बुरा कर्म के को देखता रहता है, अंधेरे में कोई भी ना हो वो परमात्मा दुख तुम्हें देखता रहता है, वो तुम्हारा नित्य बंधु है ना, परमानेंट फ्रेंड है, और तुम्हें गाइड करता रहता है। अब मजेदार बात क्या है, जो अच्छे फ्रेंड होते हैं वो हमें काम समझ में आते हैं, क्योंकि अच्छे फ्रेंड आपको गलत रास्ते पर जाना नहीं देता है, वो आपको एडवाइस करता है। हमें तो वो फ्रेंड पसंद है जो हमारी बात को मान जाए, मैं कहूं काला कौवा, मैं कौवा को सफेद कहूं वो कहे हाँ जी सफेद है, मैं कहूं लाल नीला है वो कहे नीला, हम कहते हैं ये अच्छा दोस्त है। अगर दोस्त वेल विशर आपको गाइड करे ये गलत है, तो हमें लगता है ये बुरा है, ये मुरा बुरा चाहता है। जो भी व्यक्ति हमें गलत बोलता है कि आप ये गलत कर रहे हो या गलत सोच रहे हो, फिर हमें वो दोस्त नहीं लगता। हम तो अपने माँ बाप को भी पसंद करना बंद कर देते हैं अगर वो हमें कहें कि बेटे ये गलत कर रहे हो। तो हम परमात्मा की कहां सुने? पर वो परमात्मा तुम्हें अच्छा लगे न लगे, वो कॉन्स्टेंटली तुम्हें मैसेज देता रहता है, तुम्हारे साथ खड़ा है अच्छे बुरे का रास्ता बताने के लिए अंतर्यामी के रूप में। सानो बंधुर जनिता सविधाता, और सिर्फ इतना नहीं, वो हम सबका सस्टेनर है। कोई भी संसार में सृष्टि में कोई भी चीज पैदा होता है ना, वो सेंटिएंट हो या इनसेंटिएंट हो, जीव या जड़ हो, उससे पहले परमात्मा पूरी सिस्टम डेवलप्ड हो जाता है। आप इसको कहो नेचुरली डेवलप्ड होता है या आप कहो कि परमात्मा ने बनाया, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप आस्तिक हैं आप कहेंगे परमात्मा करता है, अब ईश्वर को नहीं मानते हैं आप कहेंगे ये अपने आप होता है। जो भी हो, पर बात ये है कि संसार में कोई भी चीज एग्जिस्टेंस में आता है, जड़ या चेतन, उसको सस्टेन करने के लिए पहले पूरा इकोसिस्टम रेडी हो जाता है। आप नहीं करते, वो अपने आप रेडी हो जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे आपके घर में कोई बच्चा आने वाला हो, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट हो या आपकी बहू प्रेग्नेंट हो, तो आप घर में उसकी तैयारियां करते हैं। बच्चा पैदा होगा तो कौन से रूम में रहेगा, उसका बिस्तर कैसा होगा, उसके खिलौने कैसे होंगे, उसका झूला कैसे होगा, वो उसके कपड़े कैसे होंगे, अभी से आप तैयारी करने लगते हो। ऐसा थोड़ी होता है कि बच्चा पैदा हो गया, घर ले आए, कहीं भी डाल दिया, फिर ढूंढने लगे मैं इसको कहां रखूं, कहां बेड बनाऊं, ऐसा नहीं करते ना। ऐसा भी कुछ लोग करते हैं, पर वो तो दुनिया में हर तरह के लोग आपको हमेशा मिलेंगे। पर समझदार लोग पहले से तैयारी करता है। अब परमात्मा समझदार है ना, वो बेवकूफ तो है नहीं है। तो परमात्मा पहले से सबको, कोई भी चीज धरती में या संसार में, कहीं सूरज आता है, चांद बनता है, प्लैनेट्स बनते हैं, प्लैनेट्स के अंदर, धरती के अंदर अलग अलग जीव जगत पैदा होता है, हर एक के लिए परमात्मा व्यवस्था करता है। अगर आपको कभी मिलता नहीं है हमें और आपको, वो तो मैन मेड होता है। मनुष्य कितने चीजों को बर्बाद कर डाला अपनी ईगो और अपने लालच के कारण, इसलिए कुछ चीजें इकोसिस्टम में आपको गायब मिलेंगे, पर परमात्मा व्यवस्था करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो विधाता है, सस्टेनर है, केयर टेकर है। वो किसी को भी दुनिया में लाता है, वो कैसे सस्टेन करेगा अपना लाइफ स्पैन को, जीवन को कैसे जिएगा, उसके लिए इकोसिस्टम रेडी रहता है। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि परमात्मा आपको खाना बना के खिलाएगा, बर्तन साफ कर लेगा, झाड़ू कर लेगा, ऐसा नहीं। वो तो आपको करना है, नेचर वहां बना हुआ है, प्लांट्स हैं। रेगिस्तान में अगर कोई जानवर परमात्मा पैदा करता है, रेगिस्तान में जानवर पैदा होते हैं, वो उसी तरह के जानवर होते हैं जो रेगिस्तान के इकोसिस्टम में सर्वाइव कर सके। जो समुन्द्र के अंदर रहने वाले जो प्राणी है, परमात्मा ने उनको ऐसे ही बनाया कि समुन्द्र के अंदर वो जी सके। तो जहां जैसे परमात्मा ने बनाया उसको, वहीं पर प्रॉपर इकोसिस्टम बनाया है, इवॉल्व किया है कि वो वहां सस्टेन करे। इसीलिए सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्व, मंत्र देख लीजिए जिससे कि आपको वो मीनिंग प्रॉपर दिमाग में बैठ जाए। धामानि वेद भुवनानि विश्व, इसको ऑर्डर में किया है, विश्व धामानि भुवनानि वेद। वेद वर्ब है, क्रिया है। वो परमात्मा वेद, वेद मतलब यहां वेद पुस्तक में, वेद का मतलब होता है जानना। वो परमात्मा जानता है, ही नोज क्या, विश्व सारे ऑल समस्त धाम और भुवनों को। धाम क्या है? जगह, प्लेस और नाम। इस संसार में जितने भी लोकलिटीज है, वो सोलर सिस्टम हो, वो गैलेक्सी हो, वो प्लैनेट्स हो, प्लैनेट्स का हर वो पहाड़ हो, पर्वत हो, नदी हो, झरना हो, समुंदर हो, आपका घर हो, सबको वो जानता है और सबका नाम भी जानता है। और केवल इतना नहीं, भुवनानी, ये सारा होल यूनिवर्स, भुवन का अर्थ होता है जो कुछ पैदा हो रहा होता है, जो कुछ पैदा हुआ है वो सब भुवन है। ये वायुमंडल, ये स्पेस है, ये हवा है, ये पानी है, ये आकाश है, ये सूरज है, ये चांद है, मैं है, आप हैं, उन सबको वो जानता है। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। सब उसकी नजर में होता है। ईश्वर के ज्ञान में कोई पास्ट नहीं है, कोई प्रेजेंट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। एवरीथिंग इज प्रेजेंट, सब कुछ वर्तमान होता है। वर्तमान क्यों होता है? क्योंकि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ होता नहीं है। हम क्योंकि टेम्पररी हैं, हमारा एक पैदा होने का टाइम है, उससे पहले सब पास्ट है। हम मर जाएंगे, उसके बाद फ्यूचर है। मैं लिमिटेड हूं, मैं यहां बैठा हूं, इसके बियॉन्ड मेरे मेरे पहुंच से बाहर है, इसके बियॉन्ड भी मेरे पहुंच से बाहर है। जो हो गया वो मैं, वो मेरा पास्ट है, जो होगा वो मेरा फ्यूचर है, मुझे पता नहीं क्या होगा। पर परमात्मा सर्वज्ञ है, हर उसका एक ही काल है, वो सब चीजों को, जो हमारे लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है, उसके लिए सब वर्तमान है। क्यों? क्योंकि हमारा एज है, हमारा लिमिटेशन है, इसीलिए बहुत चीजें हम जान नहीं पाते। सब कुछ जानता है, सबके अंदर जानता है। विश्वा भुवनानी धामानी वेद। अगला अंतिम पंक्ति है, यत्र देवा अमृतमान शाना। और जहां पर वो परमात्मा, जो खुद भी लोकेशन है, वो सबका आश्रय है ना, अबोड है, रहने का घर वही परमात्मा है, जिसमें सारी देवताएं, जो डिवाइन सोल्स हैं, वो अमृतमानशाना, अमरत्व को, इमोर्टलिटी को एंजॉय करते हुए उस तीसरे धाम में रहते हैं। एक एक शब्द लेंगे, तीसरे धाम क्या है, देवा कौन, देव कौन है, अमृत क्या है। परमात्मा सारा संसार का लोकेशन तो वही है ना। मैं कहां हूं, धरती में, धरती कहां है, स्पेस में, स्पेस कहां है, परमात्मा में। तो सब कुछ परमात्मा में है और परमात्मा सब में है। तुम कोई भी लोकेशन ढूंढो, वो लोकेशन परमात्मा में है। हम मर जाते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर जाते हैं, इसी यूनिवर्स में, ये संसार में, ये विश्व में, ये विश्व कहां है, परमात्मा में। जो अंतिम जो आश्रय है, जो सुप्रीम जो शेल्टर है, रिफ्यूज है, वो परमात्मा है। उस परमात्मा में हर कोई होता है। अच्छा, तो मैं परमात्मा में हूं जी, परमात्मा मेरे में है जी, तो फिर मुझे दिखाई, मैं जान क्यों नहीं पाता। चलो, ये बात समझ में आई, सेंसेस के द्वारा जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत शटल है। और दुनिया में हर चीज इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जाता, बहुत सारे चीजें सेंसेस से बाहर है, परमात्मा के अलावा भी बहुत सारे चीजें हैं, ये समझ में आ जाता है। पर तब भी जान क्यों नहीं पाता हूं, फील कर सकता हूं, कुछ कर सकता हूं, क्यों नहीं? क्योंकि बैरियर है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। तुम्हारे मन है, माइंड है, वो मन के अंदर हजारों तरह के संस्कार हैं, इम्प्रिंट्स हैं, जो तुम्हें मजबूर करते हैं सांसारिक चीजों के प्रति अट्रैक्टेड होने के लिए। जब आप किसी के प्रति अट्रैक्टेड हो, बाकी चीजें आपको दिखाई नहीं देता है। जो लोग पैसे के पीछे पड़े रहते हैं, पैसे के अलावा और कुछ नहीं दिखता उनके लिए, उनकी फैमिली भी को भी टाइम देने को टाइम नहीं है। जब रात को आते हैं 10 बजे 11 बजे, बच्चे पत्नी सो गए होते हैं। जब सुबह वो उठते हैं 9-10 बजे, सब अपने अपने काम में चले गए होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फैमिली से कभी कभार मिलते हैं, वीकेंड में भी नहीं कभी कभार मिल पा। क्यों? उनका गोल जो है वो पैसा है, पावर है, पॉलिटिक्स है। नॉर्मल लाइफ में भी जब आप किसी चीज में फोकस करके उसी के लिए पूरी तरह अपने आप को सौंप देते हो, बाकी चीजें आसपास होते हुए भी आपको पता नहीं चलता। आपको पता नहीं आपके पड़ोस में कौन रहता है, आपको पता नहीं आपके घर में क्या क्या सामान है या नहीं है। आपके घर में ही है पर आपको पता नहीं है। आपके घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आप क्योंकि आप होते हुए भी नहीं होते हो, क्योंकि मेंटली आप और कहां बिजी हो। जब संसार में अपने घर में रहकर भी 50 चीजें हमें पता नहीं होता, क्योंकि हमारा मन शरीर बुद्धि सेंसेस और कहीं बिजी है, तो वो परमात्मा तो वैसे ही हमारे लिए यूजलेस है। सांसारिक लोभ मोह के कारण जो अट्रैक्शन है, ये जो मैटेरियल अट्रैक्शन, ये बहुत पावरफुल होता है। इसका जो आकर्षण है बहुत, ये ग्रेविटेशन पावर से भी ज्यादा पावरफुल है, खींचता है। इसीलिए वो पास में होते हुए भी हमें कभी समझ में नहीं आता। और जिस क्षण, दिस मोमेंट, आपने उस बैरियर को तोड़ दिया, दीवार के उस तरफ आपका दोस्त है, इस तरफ आप खड़े हो, बीच में दीवार है, ताला लगा हुआ है, दोनों में गहरी दोस्ती है, पर आप उसको देख नहीं पाते हो, वो आपको देख नहीं पाता है। आप उसको देखने के लिए रोते हो, तड़पते हो, वो भी आपको देखने के लिए रोता है, तड़पता है, पर बीच में एक दीवार है। और जिस दिन आपने दीवार तोड़ दिया, दोनों दोस्त गले मिलने लग गए, आपको दीवार नहीं, जितना मर्जी मिलो। परमात्मा सब जगह है, मेरे अंदर भी है, मैं इसको नहीं मिल पाता हूं, क्योंकि मेरी जो साइकोलॉजी है, जो साइक है, वो और कहीं फंसा हुआ है, ट्रैप्ड है। इसके कारण मेरे अंदर, मेरे चारों तरफ सब जगह होने पर भी मैं उसे मिल नहीं पाता हूं। जब मैं समझ करके, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आध्यात्मिक साधना के द्वारा समझ बूझ के, विवेक और वैराग्य, विवेक समझते हैं, प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मीन्स जब मैं अपने अंदर वो डिस्क्रिमिनेटिव पावर को कल्टीवेट करता हूं, चीजों को मैं अलग अलग करने की कोशिश करना, एबिलिटी को अचीव कर लेता हूं, फिर जो चीजें मेरे लिए बेकार हैं उनसे हटाता जाता हूं, वैराग्य, मेंटली अटैचमेंट हटाता जाता हूं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं करता जाता हूं, नेति नेति, फिर जब उस विवेक वैराग्य यम नियम आदि के द्वारा आप अपने आप को मेंटली फिजिकली प्यूरिफाइड करते हो, प्योर करते हो, अपनी इम्प्यूरिटी को, अशुद्धता को हटा देते हो, आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाते हो, तो फिर परमात्मा आप में रिफ्लेक्ट करने लगता है। आप इसको फील कर पाते हो, इंद्रियों से नहीं, यू कैन अब रियलाइज नाउ। क्या वो अभी परमात्मा आपके सामने आया? नहीं, वो तो पहले था, वो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके घर के पास एक बहुत बड़ा गोल्ड या डायमंड, सोना या हीरा था, पर आपको पता नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर काफी सारे मिट्टी धूल जमा हुए थे। मिट्टी और धूल झाड़ दिया तो डायमंड का चमक, सोने का या हीरे का चमक बाहर आ गया। वो आप निकारे, मेरे घर में तो सोना मिल गया, हीरा मिल गया। हीरा अभी नहीं मिला, हीरा तो वहां 15 साल से पड़ा हुआ था या 100 साल से पड़ा हुआ था, आपको अभी मिला, क्योंकि ऊपर का डस्ट अभी हटा। जिस मन की गंदगियां साफ हो जाती है, शरीर की गंदगियां साफ हो जाती है, विचार की गंदगियां साफ हो जाती है, तो फिर सब इम्प्यूरिटी हट जाने पर जब आप क्रिस्टल क्लियर प्योर हो जाते हो, तो परमात्मा को आप एंजॉय करते हो। तब आप क्या फील करते हो कि क्यों आप परमात्मा में हो और परमात्मा आप में है। यत्र देवा अमृतमान, ये अमृतमान शानः, ये कब होता है? जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा इस जो साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ है, ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र है, जब इसको आप छूट जाते हो, शरीर छूट जाता है और नया जन्म होता नहीं है, फिर आप कहां होते हो? उस परमात्मा में। यत्र देवा अमृतमान शाना, और जब आप उस परमात्मा को डायरेक्टली एंजॉय करते हो, फील करते हो उस मछली के तरह कि मैं समुन्द्र में हूं, समुन्द्र के अंदर हूं। पहले मछली समुन्द्र में होते हुए भी समुन्द्र को एंजॉय नहीं कर पाता था, क्यों? क्योंकि समुद्र के अंदर किसी ने उसको एक डब्बे के अंदर रखा था। था तो समुद्र के अंदर, पर समुद्र के अंदर एक डब्बे के अंदर था। अब वो डब्बे को हटा दिया, अब मछली पूरा बड़े से महासागर के बीच में खुशी से जहां मर्जी फैल रहा है, तैर रहा है। वो आत्मा अब शरीर रूपक डब्बे से छुट गया। पहले तो था परमात्मा में, पर शरीर मन बुद्धि रूपक आवरण से, वो कवर से अब छूट गया। अब वो खुद रियलाइज करता है उसके अंदर, और वो रियलाइजेशन का स्टेट अमरत्व है, इमोर्टालिटी है। इमोर्टालिटी कैसे? भाई मरने के लिए पैदा होना पड़ता है, शरीर होना पड़ता है। जब शरीर ही नहीं बना, पैदा ही नहीं हो रहे, तो मरोगे कहां? तब अमरत्व को प्राप्त हो गए। अंतिम लाइन कहता है, तृतीय धामन अध्ययी रयंता। और वो जो एनलाइटेंड आत्मा है, वो जो प्रबुद्ध आत्मा जिसने अपने आप को जान लिया, सेल्फ रियलाइज कर दिया, वो परमात्मा को रियलाइज कर दिया, वो कहां पर वो एंजॉय करता है? तृतीय धामनी, तीसरा धाम, धाम वाला लोकेशन। ये तीसरा लोकेशन क्या है? पहला लोकेशन आत्मा है, तुम खुद हो, तुम उससे बियॉन्ड गए तो आपको ये मैटेरियल वर्ल्ड की प्रकृति, ये मैटेरियल वर्ल्ड की जो जो प्राइमोडियल स्टेट है जिसको प्रकृति कहते हैं, वो उससे ज्यादा शटल है, वहां तक पहुंचे। फिर उससे भी जब बैंड गए, तीसरे लेवल पर जब गए, उससे भी सूक्ष्म वो परमात्मा, तो वो जो तीसरा लेवल है आत्मा, ये जो जीव प्रकृति और परमात्मा, जो तीसरे लेवल तीसरे लेयर पर जब आप जाते हो, वो परमात्मा उसमें आप एंजॉय करते हो। अब अंतिम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का अंतिम मंत्र, उससे पहले इसका जो हिंदी भाव है, बड़ा सुंदर हिंदी में जो कविता है उसको देखते हैं। तू ही गुरु है प्रजेश वितू है, पाप पुण्य फल दाता है, तू ही सखा बंधु मम तू है, तुझसे ही सब नाता है, भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है, तू ही अज अद्वैत महाप्रभु सर्वकाल का ज्ञाता है। अब तीसरा अंतिम मंत्र, आठवां मंत्र, अग्ने नयसुपथारा ये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, यो योध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेमा। ये यजुर्वेद का 40वें अध्याय के 16वां मंत्र है। उसी यजुर्वेद में 5वें अध्याय का 36वां मंत्र भी है, और अगेन उसी यजुर्वेद का 7वें अध्याय का 43वां मंत्र है। तो तीन जगह ये मंत्र अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भ में ये मंत्र मिलता है यजुर्वेद में। तो इसको ऑर्डर में, अन्वय के रूप में इसकी वर्ड मीनिंग शब्दार्थ को देखते हैं। हे अग्ने, अग्नि, अग्रणी, अस्मान नया हमें ले चलो, लीडर्स, कहां? सुपथा, अच्छे रास्ते पर, थ्रू द पाथ ऑफ वर्च्यू, थ्रू ए गुड पाथ, किसके लिए? राय, धन संपत्ति के लिए। धामानी, ये श यहां मिस हुआ है, देव विश्वानी वयुनानी विद्वान। हे देव परमात्मा, तुम विश्व समस्त सारे होल वयुना, जितने तरह के भी एक्टिविटीज है, विद्वान जानने वाले हो। वेद मतलब जानना, उसी वेद से रूट वर्ड है विद, वान, विद्वान, जानने वाला। तुम समस्त संसार के हर एक के द्वारा किया जाने वाले एक्टिविटीज को जानने वाले हो। हे अग्निस्वरूप प्रभु परमात्मा, अस्मत हमसे जुहुराणम एना, एना कहते हैं पाप को, जुहुराण कहते हैं जो जो करली है, जो घुमा फिरा कर, जो क्रुकेड पाप हैं, उनको युयोधि, जो कुटिल जटिल पाप हैं, युयुधि हटा लो और ते भूयिष्ठाम नम उक्तिम विधेम। हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे भूयिष्ठम बार बार नमः सर झुका के, सर झुकाने के साथ वाणी को बोलते रहेंगे, हम तुम्हारी प्रशंसा में सर झुकाते रहेंगे, तुम्हारे नमन करते रहेंगे, नमन करते रहेंगे। एक एक लाइन लेते हैं, बहुत खूबसूरत मंत्र है। अग्नि नय सुपथा, अग्नि मतलब हे अग्नि, अग्नि कौन है? अग्नि का एक मीनिंग है आग, पर वेद के जो शब्द होते हैं ना, प्लीज म्यूट रखिएगा कोई। जो अग्नि शब्द है संस्कृत में तो उसका मतलब आग है, पर वेदों में वो अनेक अर्थ में प्रयोग होता है। अब क्या क्या भाव है? अग्नि शब्द बना, जिस रूट से बना उसे समझ में आएगा। अग्रणी भवती थी, महर्षि यास्क निरुक्त में लिखते हैं, जो आगे लीड करता है उसको भी अग्नि कहते हैं। मानो जैसे जैसे कोई राजा हो, लीडर ऑफ द कंट्री, वो लीड करता है देश को, तो वो अग्नि है। फैमिली का जो हेड है वो फैमिली को लीड करता है, तो वो घर की मुखिया, वो अग्नि है। किसी इंस्टीट्यूशन का जो हेड है वो उस इंस्टीट्यूशन का अग्नि है। ये सूरज इस सोलर सिस्टम को लीड करता है, तो सूरज भी अग्नि है। ये यज्ञ, जिस यज्ञ का शुरुआत कहां से होती है? अग्नि प्रज्वलन से, आग जलाने से। तो आग उसका सेंट्रल पॉइंट है, तो आग इस यज्ञ का अग्नि है। किसी भी काम में, किसी भी एक्ट में, किसी भी परिस्थिति में जो लीड करने वाला वो अग्नि है। इस संसार को कौन लीड करता है? परमात्मा। वैसे अग्नि के और भी बहुत सारे अर्थ हैं, पर हम उस आज वो टॉपिक नहीं है, इसीलिए हम वहां डिटेल में नहीं जाएंगे। आज हम मंत्र पर फोकस करेंगे। ये सारे संसार को लीड करने वाला अग्रणी परमात्मा, नया ले चलो आसमान हम सबको, कहा सुपथा राये। थोड़ा सेंटेंस को पूरे दिमाग में बैठा दीजिए, अर्थ समझने में आसान होगा। अग्ने नय सुपथा राये आसमान, हमें आसमान मतलब हमें, आसमान मतलब हमें नय ले चलो सुपथा अच्छे रास्ते, सु मतलब अच्छा, पथ मतलब रास्ता, अच्छे रास्ते पर, राय कितने धन संपत्ति को। तो पहली चीज है कि हमें धन संपत्ति की ओर जाना है, राय की ओर जाना है। आपने छठे पांचवें मंत्र में भी पढ़ा, प्रजापति वाले में, श्याम पतयो रैणाम, हे प्रभु हम धन संपत्ति के मालिक बने। तो धन कमाना, धन का मालिक बनना कोई बुरी चीज नहीं है, धन तो चाहिए ही चाहिए। जो धन को नकारता है वो हिपोक्रेट बन जाता है, क्योंकि आपको जिंदा रहना है, खाना खाना है, कपड़े पहनना है, बीमार पड़े तो दवाई खानी है। तो ये दवाई क्या है? धन है। कपड़े क्या है? धन है। खाना क्या है? धन है। इन सबको जिसके द्वारा आपको मिलता है, पैसे के द्वारा मिलता है या और किसी के द्वारा आप एक्सचेंज करते हैं, वो सब धन है। रहने के लिए घर चाहिए, वो धन है। जिसमें आप सोते हो वो धन है, ये धन है, प्रॉस्पेरिटी है। जिसके द्वारा जाते हो आप, गाड़ी से जाते हो, घोड़े से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, बस से जाते हो, धन है। तो धन के बिना तो सर्वाइव नहीं कर सकते हो। हाँ, प्रॉब्लम वहां है जब धन के पीछे आप सब कुछ भूल जाते हो। जब पैसा ही सब कुछ हो जाता है देन वो प्रॉब्लम हो जाता है। वो तो फिर पैसे ही नहीं ना, वो तो किसी भी सब्जेक्ट में होगा ना। आप किसी की चीज के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो फिर तो आपका नुकसान करता है। तो जो लोग धन के लिए पागल हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम है। वो तो अति सर्वत्र वर्जित, कोई भी चीज अति हो, एक्सट्रीम हो, वो अच्छा नहीं है। हंसना अच्छी बात है, पर एक्सट्रीमली हंसना लोग आपको पागल कहेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, ठीक है ना। तो कोई भी चीज अच्छी ज्यादा तो अच्छा नहीं होता है ना, कम अच्छा होता है। धन चाहिए, हमें धन चाहिए, और परमात्मा भी कहता है धन कमाओ, पर हम तो चाहते हैं, पर धन कमाने के हजारों रास्ते हैं। और जो सबसे ललचाने वाला रास्ता है, जो सबसे मजा आता है जिस रास्ते में पैसा कमाना, वो है शॉर्टकट। जल्दी पैसा कमाओ, कम मेहनत करके कमाओ। और शॉर्टकट रास्ता को करप्ट रास्ता कहते हैं, जिसमें आप किसी की राइट को छीनते हो, किसी को आप ठगते हो, किसी के साथ कंप्रोमाइज करते हो, अपनी अनिष्ट के साथ करते हो। पर प्रभु, मैं जब धन कमाने चलूं, मेरे सामने अच्छा रास्ता भी होगा, बुरा रास्ता भी होगा। बुरा रास्ता ज्यादा ललचाने वाला होगा, ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि शॉर्टकट में बहुत पैसा कमाया जा सकता है, लूटने से, उल्लू बनाने से, ठगने से, डिसऑनेस्ट होने से बहुत पैसा कमाया जा सकता है। ऑनेस्टी से मेहनत करना पड़ता है, पैसा कब मिलेगा। मैं सही रास्ते से कमाना चाहता हूं, सुपथा, अच्छे रास्ते पर कमाना चाहता हूं। पर जब मैं अच्छे रास्ते पर कमाने जाऊं, कभी कभी मैं अपने आप को हेल्पलेस फील करता हूं। हेल्पलेस क्यों? समझ में नहीं आता है कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है। क्योंकि आप जिस तरह के सोसाइटी में रहते हैं, वहां अच्छा और बुरा का कंसेप्ट हर सोसाइटी में अलग है। आप एक ऐसा देश में रहते हैं जहां करप्शन इज पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, तो वहां करप्शन करना किसी को बुरा लगता नहीं है। तो मैं करप्शन भी कर रहा हूं, पर मुझे लगता है मैं सही कर रहा हूं। मैं लोगों को ठग रहा हूं, तब भी मुझे लगता है मैं तो उनका भला कर रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी। इसलिए है प्रभु, तुम मुझे रास्ता बताओ, सही रास्ते पर ले चलो, उस धन कमाने के रास्ते पर। तुम ही क्यों ले चलो? क्योंकि अगला लाइन है, देव विश्वानी वयुनानी विद्वान। यहां का शब्द मिस है, उसको ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हे देव परमात्मन, डिवाइन गॉड, तुम विश्व समस्त वयुन कर्म को जानने वाला हो। तुम ही तो हो जो अच्छा बुरा हर चीज को जानते हो। हम मेंटली, फिजिकली, ओरली जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, उन सबको तुम नोट करते हो। तुम्हें पता है क्या सही है, क्या गलत है। कभी कभी सिर्फ करप्शन की बात नहीं, जो धर्म का मार्ग है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आता है कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है। बहुत सारे डिलेमाज लाइफ में होते हैं, कंफ्यूजन्स बहुत होता है। मुझे बच्चे या परिवार, पेट पालने के लिए पैसा कमाना है। जब पैसा कमाने जाता हूं, मुझे जो मेरा जो बॉस है, मालिक है, मेरे से गलत काम करने के लिए फोर्स करता है। मैं अगर बॉस की बात ना मानूं तो मेरे घर में बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं भी। मैं अगर बॉस की बात, अपने मालिक की बात मानता हूं तो मैं गंदा काम करता हूं, तो मैं कौन सा रास्ता चुनूं? ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल देने की कोशिश की। ऐसे लाइफ में हजारों लाखों डिलेमा जाते हैं, जहां हम कंफ्यूज्ड होते हैं कि कौन सा धर्म है, कौन सा अधर्म है। मैं भूखा प्यासा तड़प रहा हूं, मैं वेजिटेरियन हूं, मैं प्राणियों का मांस नहीं खाता हूं, पर मैं रेगिस्तान में फंसा हुआ हूं, 15-20 दिन से तड़प रहा हूं, मैं मर जाऊंगा। और किसी ने मुझे कहा कि वो रेगिस्तान में जो कीड़े मकोड़े हैं उनको ही खा लो, तो मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं क्या करूं? मैं कीड़े मकोड़ों को खाऊं तो पाप है, ना खाऊं मैं मर रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। ध्यान देखिए, मैं जस्ट इमेजिन करके कुछ कुछ सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, पर जरूरी नहीं कि ऐसा हो। हमारे लाइफ में, हर एक के लाइफ में हजारों ऐसे सिचुएशन आते हैं जहां हम समझ नहीं पाते कौन सा धर्म का मार्ग है, कौन सा अधर्म का। कौन सा पाप है, कौन सा पुण्य है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इसलिए हे प्रभु, तुम तो सब कुछ जानते हो, तुम सर्वज्ञ हो, मेरे अंदर से मुझे प्रेरित करो अच्छे रास्ते पर जाने के लिए। परमात्मा कैसे आपको रास्ता बताएगा, सामने आकर के बताएगा बेटे गलत कर रहे हो, इधर नहीं उधर जाओ? नहीं, ये तुम्हारे अंदर से प्रेरणा करता है। जब भी तुम गलत करते हो, अंदर से आप गिल्ट फीलिंग करते हो, बुरा फीलिंग होता है। जब भी अच्छा काम करते हो, सोचते हो, आपको अच्छा फीलिंग होती है। आप कहोगे ऐसा सबका सबके साथ नहीं होता है, अगर होता तो कुछ लोग कॉन्स्टेंटली बुरा काम करते हैं, लोगों को मारते रहते हैं, काटते रहते हैं, जानवरों को मारते हैं, उनको तो गिल्ट फीलिंग होती नहीं है। उनको भी होता था, शुरू शुरू में होता था, उनको भी परमात्मा की प्रेरणा समझ में आता था, नहीं ये गलत है ये सही है। पर अपना लालच, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, जो भी माइंड को करप्ट करने के लिए जो भी हमारे इमोशंस है, वो इमोशंस हावी होते गए। पहली बार मैंने खून किया, बुरा लगा, चार पांच दिन तक मुझे सपने में आया ये अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। फिर मैंने दोबारा खून किया, तब थोड़ा कम गिल्ट फीलिंग हुआ। पर मैं लालच के कारण या इग्नोरेंस के कारण, इल्यूजन के कारण मैं करता गया करता गया। अब ऐसा स्टेज आ गया कि मुझे अब अंदर की आवाज सुनाई नहीं देता है। मेरे पापों का, मेरे बाहरी दुनिया का लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इल्यूजन, इग्नोरेंस का ड्रम इतने जोर जोर से बज रहा है, मेरे अंदर की आवाज अब सुनाई देना बंद हो गया है। पर अभी भी परमात्मा अंदर से बोलता है ये गलत है सही है। पर तुम सुन सकते हो, सकते हो कब? जब अपने आप को दोबारा क्लीन करने लगो, अपने मन को साफ करने लगो, अपने कर्मों को कम करने लगो, तो कभी जब अपने अंदर जाने की कोशिश करोगे, जिसको कहते ना जमीर को जगाओ, अपने सिक्स सेंस को जगाओ, अपनी आत्मा को जगाओ, मतलब ये हिंदी वाली आत्मा को, जिसको मतलब अपने अंदर की आवाज को कभी सुनने के लिए थोड़ी कोशिश करो। जब करोगे तो आपको फील होगा कि आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। हे परमात्मा, मुझे वो शक्ति दो, एबिलिटी दो कि मैं तुम्हारी प्रेरणा को जान पाऊं और सही रास्ते पर चलूं। और क्या कहा? हे प्रभु, असमत मुझसे, हमसे जो एन है, एन कहते हैं जो पाप है, युयोधि हटा दो, कीप अस अवे फ्रॉम दोज एनह, पाप, बुरे कर्मों से। और वो पाप कैसा? जो जुहुराण है, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो कुटिल है, जो हमारे अंदर कुटिलता है, कुटिलता समझते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड सोच हमारा है, जो हमने अपने लाइफ को, सोच को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है अपनी बुरे चीज को जस्टिफाई करने के लिए, जो कनिंगनेस हमारे अंदर आ चुका है, जो क्रुकेड माइंड हमारे अंदर आ चुका है, जो हम हर गलत को सही साबित करने के लिए हजारों आइडियाज ले आते हैं, हर सही को गलत साबित करने के लिए हजारों लॉजिक्स ले आते हैं, ये क्रुकेड माइंडेड पर्सन का काम होता है। इस तरह की जो क्रुकेडनेस हमारे अंदर जो है, या जो कॉम्प्लिकेटेड सोच हमने बना रखा है, हे प्रभु उसको हटा दो। ध्यान रखिए, लाइफ एक्चुअली बहुत सिंपल है, हमने उसको क्रुकेड बनाया है। कभी पैसे के लालच से, कभी सोशल नेम, फेम, यश, कीर्ति, जो भी है, पावर, पॉलिटिक्स, इसके कारण हम अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड, कनिंग है ना, धूर्त बनाते हैं। और धूर्तता जब आ जाती है, जब वो कनिंगनेस आ जाता है, तो आप नोइंगली अननोइंगली गलत काम करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, और आपको पता नहीं लगता गलत करते हैं, उल्टा आप अपने पर प्राउड फील करते हैं, देखो मैं कितना स्मार्ट हूं, मैंने उसको चुना लगा दिया, इसको उल्लू बना दिया, उससे काम निकाल के ले आया, मैं 5 की जगह देखो 25 में बेच दिया, 25 की जगह $3 में खरीद लिया, 5 लोगों को कैसे देखो ब्रेन वॉश करके काम करवा दिया। ये कनिंगनेस है, ये स्मार्टनेस नहीं है। और हम कनिंगनेस को स्मार्टनेस का नाम देते हैं, पाप कमाते जाते हैं, और प्राउडली हमें लगता है मैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं। इसीलिए हे प्रभु, मेरे अंदर वो जो क्रुकेड सेंस है, वो जो क्रुएलिटी का भी सेंस है उसको प्लीज हटा दो। हटाने हटा दो मतलब थोड़े कि परमात्मा आकर हटाएगा, हटाना तो आपको पड़ेगा। हे प्रभु मुझे वो शक्ति दो, वो एबिलिटी दो कि मैं उसको हटा सकूं। और एंड में क्या कहा मंत्र के, ते भूयिष्ठाम नमः उक्तिम विधेम। ते मतलब तुम्हारे, भूयिष्ठ मतलब बहुत ज्यादा, ह्यूजली बहुत ज्यादा, नमः नमन करना, सर झुकाना, प्रणाम करना, उक्ति मतलब बातें, विधेम करेंगे हम बार बार तुम्हारे लिए अपने आप को झुकाएंगे। सर झुकाना जरूरी नहीं, मन झुकाना, ईगो को झुकाना, अपने अहंकार को झुकाएंगे, हम तुम्हें नमन करते रहेंगे विथ ग्रैटिट्यूड, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड से थैंकफुल होंगे, तुम्हें बार बार नमन करते रहेंगे, नमन करते रहेंगे। तो पूरा क्या भाव हुआ, हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, अग्रणी लीड करने वाला परमात्मा, हमें धन कमाने के लिए अच्छे रास्ते पर ले चलो, क्योंकि तुम ही हो जो सही गलत डार्क ब्राइट सबको ठीक ठीक जानते हो। एट द एंड ऑफ द डे हम तो मनुष्य हैं, हमारा लिमिटेड समझ है, लिमिटेड ज्ञान है, कितना भी हम ज्ञान ले लें, बुद्धि को क्लीन कर दें, हम समझ नहीं पाते कभी कभी क्या सही है क्या गलत है। इसलिए प्लीज मुझे हेल्प करो, मैं अपनी एबिलिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा सकूं, मैं अपने विवेक शक्ति को जगा सकूं, जिसे मैं समझ सकूं क्या गलत है सही है। और ये प्रभु स्पेसिफिकली मुझे हेल्प करो, मेरे अंदर वो कनिंगनेस ना रहे, वो क्रुकेड माइंड ना रहे, मेरे वो पाप जो मेरे सफेद को झूठ, सफेद को काला, काला का सफेद करके जो मैं बनाता हूं, दूसरों को उल्लू बना के नहीं, खुद को उल्लू बनाता हूं ना। जब भी आप बुरा काम करते हैं पहले खुद को उल्लू बनाते हैं, खुद को समझाते हैं कि ये सही है सही है, दूसरों को बाद में आप समझाते हैं। जो दूसरों को आप कन्विंस करते हैं वो तभी करते हैं जो पहले अपने आप को कन्विंस करते हैं, और गलत काम करके खुद को जब कन्विंस करते हैं, यही है सबसे बड़ा कनिंगनेस है। सारे बुरे लोग जो होते हैं ना पहले खुद को कन्विंस करते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूं, उसको जस्टिफाई करते हैं अपने नजर में, फिर करते हैं, फिर कोई पूछे तो उसको जस्टिफिकेशन देते हैं, सामने वाला माने ना माने दे डोंट केयर। बुरा आदमी कभी ये माइंड नहीं करता सामने वाला क्या सोचता है, वो बस खुद को कन्विंस करता जाता है। ये जो बुरे काम करते हुए भी खुद को कन्विंस करता है, क्योंकि खुद को कन्विंस किए बिना आप कर ही नहीं सकते हो, ये क्रुकेड माइंड का कंट्रीब्यूशन है। तो प्रभु उससे मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे शरण में जाता हूं, मुझे तुम्हारा आशीर्वाद मिलता रहे, मेरे तुम्हारे आशीर्वाद से मेरी बुद्धि विवेक ठीक ठीक काम करें, मैं सही डिसीजन ले पाऊं, सांसारिक जीवन में भी आगे बढ़ूं, आध्यात्मिक रास्ते में भी आगे बढ़ूं, पर उसके लिए तुम्हारी आशीर्वाद कृपा की जरूरत है। इसी के साथ ये आठों जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना के मंत्र समाप्त होता है, इसका जो हिंदी वाला प्रार्थना करके समाप्त करते हैं, फिर शांति पाठ वो इंफॉर्मेशन होगा। तू ही स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सृजनहार, तू ही रसना निषिद्ध निरटे, तुम ही को मन में बसना सदा, तू ही अघ अनर्थ से हमें बचाते रहना, हरदम दया निधान, अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान, यही विशद वरदान। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, नमस्ते।